Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om, Om, Om. Sarvagya. आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर विचार आरंभ हो रहा है। इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी महाराज के परम शिष्य नृसिंह अवतार सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखी है और उस वार्तिक का नाम है मानसोल्लास। तो इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के विचार के प्रसंग में मानसोल्लास पर भी विचार करते जाएंगे। तो मूल श्लोक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, शायद प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की तरफ से मूल श्लोकों का, ये 10 श्लोकों का ये फोटोकॉपी पत्रिका आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। आप इस श्लोकों का अभ्यास करें और जब हम इसके पदों पर विचार करने लगेंगे, पदार्थ पर, तो आप एक एक पद के उच्चारण करें, पढ़ें और उसके अर्थ पर चिंतन करें, तो अवश्य ही मुमुक्षुओं को ये बहुत सहायक होगा। परम पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज का ये प्रिय मंगलाचरण श्लोक है। अपने प्रवचनों के आरंभ में हमेशा इस श्लोक का वो मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया करते थे।
विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरगतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये
इदम् नमः। ये मेरा नमस्कार है। किसको? गुरुमूर्तये, जो साक्षात गुरु के रूप में अद्वैत वेदांत के प्रथम आचार्य के रूप में प्रकट हुए, ज्ञानावतार गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति के बारे में हमने कल संकेत किया था। मुमुक्षु जिज्ञासु श्रद्धालु सनत कुमारों को शास्त्र विधि से गुरु की आवश्यकता पड़ी। यूं तो उनको किसी ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वह नियम और विधि का उल्लंघन करता है तो प्रत्यवाय का भागी बनता है। इस अर्थ में कि सनत कुमार यदि गुरु न करते तो उनको पाप लगता, ऐसा नहीं है, सामाजिक दोष लगता, क्योंकि वह स्वयं स्वरूपतः जन्मतः निवृत्त मार्गी थे, ज्ञानमूर्ति थे। पाप तो उस पर लगता है जिसको कर्म में कर्ता भाव होता है। सनत कुमारों में कर्ता भाव नहीं था, इसलिए उनको इस प्रकार के पाप या प्रत्यवाय की शंका नहीं कर सकते, वो तो मुक्त पुरुष थे। फिर भी सामाजिक एक प्रत्यवाय होता है कि वह कि गुरु परंपरा का उच्छेद करने का प्रत्यवाय उनको लगता, तो उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए सनत कुमारों ने गुरु की जिज्ञासा की और उनकी जिज्ञासा की परिपूर्ति किया भगवान शिव ने। ज्ञानावतार करुणामूर्ति भगवान शिव स्वयं ही बाल रूप में युवा रूप में बटवृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर बैठे और उन पर उनकी श्रद्धा हुई। देखो, महापुरुषों को वो काम करनी चाहिए जिससे जिज्ञासु और मुमुक्षुओं की श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का उपेक्षा गुरुओं को नहीं करनी चाहिए। उनकी श्रद्धा जिस रूप में, जिस भावना से उनकी श्रद्धा है, उसी रूप में उनके श्रद्धा को आदर करना चाहिए। मुझे महाराज जी ने एक जगह लिखा है, अखंडानंद जी महाराज जी ने प्रवचन में कहा, दृष्टांत के रूप में दिया। कहते हैं एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, बड़े ज्ञानी महात्मा थे और उनके दो चार शिष्य भी थे, और कहीं चातुर्मास करने के लिए किसी शहर में पहुंच गए। श्रद्धालु भक्तों ने आग्रह किया कि महाराज आप यहीं रहें और चातुर्मास में हमें कुछ वेदांत ज्ञान गुण की बात सुनाएं। कहते महात्मा, ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, हमको कहीं न कहीं बैठना है चातुर्मास में, तुम कहते हो तो यहीं बैठ जाते हैं। तो बैठ गए। एक बार किसी भक्त ने भोजन के लिए बुलाया, वो भी वहां का नामी भक्त था उस शहर का। महाराज हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है, हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर में भोजन के लिए पधारें। महात्मा ने कहा कि ठीक है, हमको भोजन तो करनी ही है, चाहे प्रेमपुरी की करें चाहे आपके घर की करें, भोजन तो करनी ही है, लेकिन हमारे साथ दो चार और शिष्य भी हैं। बोले कोई बात नहीं, आप मंडली की सहित आए, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ईश्वर की कृपा से सब कुछ व्यवस्था है। महात्मा पहुंचे, शिष्य सहित भोजन किया, भोजन बहुत बढ़िया था। भोजन के पश्चात उस भक्त ने महात्माओं को और उन महाराज को, सभी को अपनी क्षमता अनुसार खूब दक्षिणा, खूब सामग्री, संतों को क्या चाहिए, दंड कमंडलू, कौपीन, कंथा, यही तो है संतों की संपत्ति। तो उसने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दी महात्माओं को खूब, समर्थ था, वैभव से संपन्न था, कपड़े लत्ते दंड कमंडलू बहुत कुछ दिया एक एक महात्माओं को। महात्मा आपस में विचार करने लगे, महात्मा की तरफ, गुरु की तरफ देखने लगे। महात्मा ने कहा, बेटा क्या देखते हो, उठाओ ले चलो। तो सब कुछ उठा के लेके आए। तो महात्मा, गुरुजी तो खाना खा के आए थे, वो आराम करने के लिए चले गए, और वो जो शिष्य लोग थे आपस में बैठकर वार्ता करने लगे, विचार करने लगे। देखो ये कैसा धन का अभिमानी है, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकले हैं, त्यागी हैं, और ऐसे विरक्त त्यागी को ये ऐसा समझता है कि ये परम विलासी हैं, भोगी हैं, इनको सब कुछ चाहिए और इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि इन सबको तो हम छोड़ के निकले हैं और ये दे रहा है, हमारे त्याग पर इसको विश्वास नहीं है। और हमारे गुरुजी भी फिर कैसे है, देखो लेके चलो कहते हैं, ये सब छोड़ दो, यहीं कह देना चाहिए था, हम लेके आ गए, अब इसका क्या करेंगे, पहले से एक डंडा है, दूसरा डंडा क्या करेंगे, पहले से ये कमंडलू है, दूसरा कमंडलू आ गया, उसका क्या करेंगे, पहले से ही एक जोड़ी वस्त्र है तो ये दूसरे जोड़ी वस्त्र आ गए, इसका क्या करेंगे, आपस में वह वार्ता करने लग गए। तो महात्मा सुन रहे थे, महात्मा ने कहा क्या बात है महात्माओं, तुम लोग सो नहीं रहे हो, क्या चर्चा कर रहे हो। तो कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। महात्मा ने कहा कुछ तो कर रहे हो, बोलो क्या कर रहे हो। महाराज ये चीज है, हम इस तरह सब कुछ त्याग करके छोड़ छाड़ कर निकले हैं और इस हमारी त्याग का यह कुछ महत्व नहीं समझ रहा है और ये सारा संपत्ति दे रहा है, अब यह क्या करें बोलिए। और आपने कहा कि ले चलो, अब इसका क्या करेंगे, एक कमंडलू की जगह दो कमंडलू, एक डंडे की जगह दो डंडे, एक जोड़ी वस्त्र की जगह दो जोड़ी वस्त्र, एक छाता की जगह दूसरा छाता, एक खड़ाऊं की जगह दूसरे खड़ाऊं। महात्मा ने कहा कि अरे क्यों परेशान होते हो, रखे रहो पड़े रहो, कोई और दूसरा महात्मा है जिसके पास कमंडलू नहीं है उनको दे देना, कोई दूसरा महात्मा आएगा जिसके पास एक जोड़ी वस्त्र नहीं है उनको दे देना, कोई महात्मा आएगा जिसके पास दंड नहीं है उनको दंड दे देना, वो कोई महात्मा आएगा जिनके पास छत्री नहीं है छत्री दे देना, क्यों परेशान होते हो, सामान पड़ा रहने दो, जो आएगा जिसके काम में आएगा दे देना। बोले महाराज जब देना ही था तो पहले क्यों लिया, लेना ही नहीं चाहिए था, आपने कहा ले चलो। तो महाराज जी ने दृष्टांत दिया है, कहते देखो वो पैसे वाला व्यक्ति है, वो तुम्हारी त्याग तपस्या संत साधु के प्रति परम श्रद्धा रखता है और तुम्हारी त्याग पर श्रद्धा रख के ही वो ये सब कर रहा है, क्योंकि वह वैभव में संपत्ति में खेलता है, इसलिए उसके अलावा श्रद्धा व्यक्त करने को दूसरे विकल्प सोचता ही नहीं है, वो पैसों में खेलता है, इसलिए पैसा देने से महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, हमको कृपा मिल जाएगा, क्यों उसको तो वही है, तो इसीलिए उसकी श्रद्धा जो तुम्हारी प्रति थी उस श्रद्धा को सामग्री के माध्यम से उसने व्यक्त की है, यदि तुम लोग उसको वहीं छोड़कर आ जाते तो उसके श्रद्धा में आघात पहुंचती, मैंने दिया और महात्माओं ने लिया नहीं, तिरस्कार कर दिया, तो उसके श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर कल किसी आवश्यक महात्माओं को कोई सामान की आवश्यकता पड़ी वो देगा नहीं फिर, क्योंकि महात्मा को क्या जरूरत है कहेगा वो, तो इसलिए उसकी श्रद्धा की रक्षा करना बहुत जरूरी था, इसलिए तुम लोग को हमने कहा उठा के ले आओ, अब तुम्हें आवश्यकता है रखो, नहीं है तो बांट दो दूसरे साधु को दे दो, खत्म हो गई बात, उसकी श्रद्धा तो बची रही सुरक्षित रही। महात्माओं ने कहा कि बहुत अच्छी दृष्टि है, हमारी दृष्टि गई नहीं वहां पर। तो कुछ दिन के बाद फिर दूसरा संत ने भोजन के लिए बुला लिया, माने भक्त ने, तो गए महात्मा मंडली सहित, भोजन किया, बड़ा प्रेम से भोजन किया, जब चलने लगे तो उसने एक पैसा भी दक्षिणा नहीं दी, उसने उस भक्त ने दक्षिणा के एक पैसा भी नहीं दिया, सामान की तो बात ही छोड़ दो, दंड कमंडलू कौपीन खड़ाऊं छाता छत्री कुछ नहीं, दक्षिणा भी नहीं दी, वापस आ गए कुटिया में। महात्मा तो गुरुजी थे वो तो सो गए और शिष्य इधर फिर चर्चा करने लग गए, क्या बात है, देखने में तो लगता है घर इतना बड़ा है, वैभव क्या है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर हैं, इतने चाकर हैं, सब कुछ है, और भोजन करने के लिए बुलाया, खाली भोजन करा दिया, एक पैसा भी नहीं दिया। कैसा आदमी है, कंजूस, महाकंजूस। तो बात करने लगे तो महात्मा को फिर पता चला कि अरे भाई क्या बात है, तुम लोग सोए नहीं हो। तो बोले महाराज देखिए ऐसा है, ठीक तो कर रहा है वो तुम्हारी त्याग तपस्या अपरिग्रह का आदर करता है। वो ये डर रहा है कि इतने बड़े त्यागी, इतने अपरिग्रही, यदि मैं इनको 100 रुपया दे दूं तो उस साधु को रात भर निद्रा नहीं आए कि 100 रुपया मैं क्या करूं। तो तुम्हारी त्याग का ही वो सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है। देखो तो हम तो वही हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, अखंडानंद जी महाराज दृष्टांत देते हैं, साधु को इसी तरह रहना चाहिए है? वो जो कर रहा है वो श्रद्धा, उसकी श्रद्धा की रक्षा। तुम यदि पैसा मांगने लग जाते, अरे चलते समय में भोजन कराया और दक्षिणा नहीं दिया कहते, तो फिर वो तुम्हारी श्रद्धा पर आघात होता है। ये कैसे लोभी साधु हैं, इनको पैसे की क्या आवश्यकता, खाना था भोजन कर लिया हो गया, वैसे क्या आवश्यकता। साधु होकर दक्षिणा पैसा मांगते हैं, कैसे लोभी, उसकी श्रद्धा खंडित हो जाती और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो देकर भी वो श्रद्धा ही कर रहा है, न देकर भी तुम्हारी त्याग का आदर और श्रद्धा ही कर रहा है। यदि ये न होती तो भोजन के लिए न बोलाता, बड़े प्रेम से भोजन कराया। तो ये दृष्टांत से यही समझना चाहिए कि महापुरुषों को किसी की भी श्रद्धा, जिस रूप में वो श्रद्धा कर रहा है, उसकी श्रद्धा का हर हालत में रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी श्रद्धा को तोड़ दो, मैं विरक्त हूं, मैं त्यागी हूं, मुझे पैसा देकर मेरे विरक्ति, मेरी त्यागपना का खंडन कर रहा है, मुझे लोभी और भोगी समझता है, ये भी उसकी श्रद्धा का हनन होगा। तो भगवान शिव, दक्षिणामूर्ति शिव, ये वह गुरु हैं जो जिस रूप में श्रद्धा करना चाहता है वह उसी रूप में उसकी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। वह गुरु चाहते हैं, लेकिन गुरु कैसा चाहते हैं कि देखने में वह त्यागी हो, विरक्त हो, असंग हो, अपरिग्रही हो, अनासक्त हो, निष्प्रपंची हो। भगवान शिव को वैसा ही बनकर सनत कुमारों के सामने आना पड़ा और आए, और उनकी श्रद्धा का सम्मान हुआ, रक्षा हुई और बैठ गए वहीं। गुरु बोल नहीं रहे, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, और उन्होंने खाली संकेत करके चिन मुद्रा भद्रा मुद्रा दक्षिणामूर्ति में यो भद्रया मुद्रया करके उसका संकेत किया है। उतने से उनको ज्ञान हुआ, बोध हो गया, गुरु मान लिए। अब देखो उपनिषद का प्रसंग है, वही नारद जी जिन्होंने पहले सनत कुमारों को गुरु करने के लिए प्रेरित किया, और नारद जी की प्रेरणा से सनत कुमारों ने गुरु का अनुसंधान किया और दक्षिणामूर्ति भगवान शिव गुरु के रूप में उनको प्राप्त हुई। कालांतर में वही नारद जी फिर उन्हीं सनत कुमारों के पास जाते हैं और कहते हैं अधि ही भगवन, हे भगवन मुझे कुछ उपदेश कर लीजिए, मैं सारे वेद वेदांग आदियों को जानता हूं, शिक्षा निरुक्त आदि सब कुछ जानता हूं, पद और पदार्थ सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने सुना है उपनिषदों में तरति शोकम आत्मवित, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति समस्त शोक मोह से वह तर जाता है। मैं सारे उपनिषद वेद वेदांग आदियों को सबको अच्छी तरह जानता हूं, अपद पदार्थों को जानता हूं, फिर भी मेरा शोक मोह निवृत्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मैं शास्त्र को परोक्ष, माने आत्मा को, ब्रह्म को परोक्ष रूप में तो जानता हूं, अपरोक्ष रूप में नहीं जान रहा हूं। तब वो आत्मा अपरोक्ष रूप में ज्ञात हो और शोक मोह से निवृत्ति हो तो मुझे उसका कोई उपदेश करिए। तब वही सनत कुमारों ने नारद जी को फिर सद्विद्या का उपदेश किया। छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार का संवाद है। तो क्योंकि नारद जी को मालूम है कि यही मेरे शोक मोह को निवृत्त कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जब गुरु नहीं किया है तो फिर मैं ऐसे को गुरु में कैसे बनाऊं? तो परंपरा होनी चाहिए। तब उनको पता चला कि दक्षिणामूर्ति को इन्होंने गुरु बना लिया है, तो अब मुझे इनको गुरु बनाना कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शास्त्र मर्यादा है, गुरु परंपरा है। संततमातनोस्मि अस्मद गुरुम संततमानतोस्मि। तो ये प्रसंग है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का। और सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, मानसोल्लास वार्तिक। सुरेश्वराचार्य जी ने अपने वार्तिक लिखने के क्रम में मंगलाचरण के रूप में पहला श्लोक लिखा है, बड़ा सुंदर है ये। मंगलम दिशतु मे विनायको, मंगलम दिशतु मे सरस्वती, मंगलम दिशतु मे महेश्वरी, मंगलम दिशतु मे सदाशिव, मंगलम दिशतु मे सदाशिव। विनायक, नायक और विनायक, हम लोग सब क्या हैं? नायक हैं। या तो हम किसी और के ऊपर शासन करते हैं, या हमारे ऊपर कोई और शासन करता है, इसलिए हम नायक हैं, हम लोग विनायक नहीं हैं। हम नौकर के ऊपर शासन करते हैं, बच्चों के ऊपर शासन करते हैं, और या फिर मां बाप के द्वारा शासित हैं, पति पत्नियों के द्वारा शासित हैं, और कुछ नहीं, अपने से ज्यादा जो बॉस है उसके द्वारा तो शासित है ही है। तो हम लोग सब नायक हैं, भगवान गणेश विनायक हैं। उनके ऊपर, भगवान गणेश के ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह शासन करने वाला कोई नहीं है तो अनुशासित हीन है, ऐसा नहीं है। यही तो उनकी विनायकता है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, उसके ऊपर और कोई नहीं है, इसका मतलब वो स्वच्छंद हो जावे, ये तो मानवीय गुण है, दानवीय गुण है। तो गुण क्या कहें? दानवीय गुण को तो हम लोग की दृष्टि से दुर्गुण ही कहा जाए। जो जितना बड़ा है वो उतने ही मर्यादा और अनुशासन में रहना चाहिए। विनायक, विघ्न विनाशक होने के कारण वो विनायक है। विघ्नों का नायक है और खुद विनायक है। तो ऐसे जो विनायक हैं, विघ्न ध्वंस, विघ्ननाशक, विघ्न ध्वंसक, मंगलम दिशतु मैं, मेरे लिए वो मंगलकारक हों, मंगल का उपदेशक बने, संवाहक बने। तो पहला तो गणेश जी के बारे में उन्होंने मंगलाचरण में गणेश जी का स्मरण किया, क्योंकि मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक, ये तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में इसका संकेत किया है, अध्यास भाष्य में। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां कोई नमस्कारात्मक नहीं है, लेकिन ब्रह्मसूत्र बादरायण जी ने सीधे ही, कोई भूमिका नहीं, कोई मंगलाचरण नहीं, किसी परमात्मा को नमस्कार आदि नहीं किया, और सीधे ही सूत्र की रचना कर दी कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बोले तुमने देखा नहीं, अथ ये शब्द का जो प्रयोग किया यही तो मंगलाचरण है। ఓంకారశ్చాథ శబ్దశ్చ ద్వావేతో బ్రహ్మణః పురః కంఠం విత్త వినిర్యాతో తస్మాత్ మాంగళికాభువో. సృష్టి కే ఆరంభ మే దో శబ్ద క్రమశ ప్రగట్ హుయే పరమాత్మా కే శ్వాసోచ్ఛ్వాస సే. సబ్సె పెహలా శబ్ద ప్రయోగ హువా, అక్షర ప్రయోగ హువా, ఓం ప్రణవ్. ఉస్కే తురంత బాద్ అథ యే శబ్ద ప్రయోగ హువా. तो अतः ओम और अथ ये सृष्टि के आदि के परमात्मा के ध्वनि हैं, अतः दोनों ही मंगलवाची हैं, मंगलकारक हैं.